पृष्ठ संख्या 52। कालिदास मल्लिका से तो अपेक्षा करता, एक आशा और विश्वास के साथ आता है कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथा स्थान। इस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। ऐसा क्यों? अपेक्षाएं स्वयं उससे भी तो हो सकती हैं, लेकिन उल्टे उसे वहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध होता है हमारे परिवर्तन को देखकर। इच्छा का समय के साथ द्वंद्व सूक्ष्म और गहरे स्तर पर नाटक के सामने नहीं आ पाया। जहाँ तक मल्लिका का संबंध है, उससे संबंधित सारे स्थल निर्विवाद हैं, क्योंकि उसके भावनामय व्यक्तित्व के अनुकूल है। यद्यपि जितना समर्पण भाव उसमें दिखाया है, उतना ही आत्मविश्वास, दृढ़ता और स्पष्टवादिता भी। कालिदास को लेकर उसके मन में कोई अपराध भावना नहीं है। विवाह प्रसंग को लेकर भी वह अपने को स्वतंत्र मानती है। उसका जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। आलोचना का अधिकार भी वह किसी को देना नहीं चाहती, लेकिन अंत में उसका समर्पित व्यक्तित्व ही प्रधान हो जाता है। अपने वर्तमान से गहरा असंतोष होते हुए भी वह उसमें जीती है। एक ओर उसे लगता है, परंतु उसमें वीरांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। वितृष्णा भी, आत्मग्लानि भी, आत्माभिमान भी, टूटन भी, और सारी पीड़ा और असंतोष के पीछे छिपा एक संतोष भी। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। मतलब मल्लिका अपने सारे निर्णयों, उलझनों, भावों में बहुत स्पष्ट है। लगता है मल्लिका राकेश की आकांक्षा है, केवल कल्पना नहीं। एक ऐसा नारी रूप जो रचनाकार के लिए प्रेरक हो, उसकी रचनात्मक शक्ति का विस्तार करने में सहायक हो, कहीं बाधक न बनता हो। नाटक में और बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो समकालीन अनुभव को व्यक्त करते हैं, और नाटक को जो आज के यथार्थ के निकट ले आते हैं। कई पात्र हैं जो कथा श्रृंखला को जोड़ते, विकसित करते ही नहीं चलते, पूरे नाटक को आधुनिक संदर्भों में महत्वपूर्ण बनाते चलते हैं। उदाहरण के लिए पहले अंबिका को ले, गांव की वृद्धा स्त्री और मल्लिका की माँ, जिसके माध्यम से राकेश ने आज की भौतिकवादी यथार्थ में विश्वास करने वाली व्यवहारिक दृष्टि को प्रस्तुत किया है। मल्लिका और अंबिका भावना और यथार्थ का द्वंद्व प्रस्तुत करती हैं। आज के दृष्टि भेद और द्वंद्वों की अभिव्यक्ति इन दोनों के संवादों में होती है। जीवन को भावना न मानकर कर्म मानने वाली अंबिका को मल्लिका की भावना से वितृष्णा होती है। उसे यह सब छलना और आत्मप्रवंचना लगता है। वह नहीं समझ पाती कि भावना से जीवन की आवश्यकता किस तरह पूरी होती है। उसकी यथार्थ दृष्टि से घृणा करती है, क्योंकि उसे वह आत्मसीमित लगता है, केवल अपने मोह से। यथार्थ से आंख मूंद कर जीने की उसकी अवस्था बीत चुकी है, लेकिन साथ ही मल्लिका के प्रति गहरा लगाव उसके मन में है। मातृ हृदय की करुणा, पीड़ा, वात्सल्य, सहानुभूति, उसकी सारी कठोरता, आक्रोश और कड़वाहट के बीच में से भी फूटी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि अंबिका में व्यवहार कुशलता और यथार्थ जगत की कठोरता और मातृत्व की कोमलता और करुणा का अंतर्ग्रंथन बड़ी सफलता से हुआ है। पृष्ठ संख्या 53। लेकिन आज के उभरते द्वंद्व को नाटक में भरने के लिए ही राकेश ने अंबिका के व्यावहारिक दृष्टि को विशेष रूप से प्रस्तुत किया है, जो मल्लिका के केवल भावनामय, समर्पणमय व्यक्तित्व के विरोध में पड़ता है और आपसी टकराहट से नाटक में तीखेपन और द्वंद्व को पैदा करता है। इस रूप में अंबिका का चरित्र नाटक को और ही नया सौंदर्य, नए अर्थ प्रदान करता है और उसे कोरी भावुकता से बचाता है। सत्ता और रचनाकार के द्वंद्व के अलावा मौलिकवादी और भावनावादी दृष्टि के टकराहट नाटक की अभिव्यक्ति को गंभीर माध्यम बनाती है। स्थूल स्तर पर यह टकराहट मल्लिका और अंबिका में है, पर सूक्ष्म स्तर पर यह कालिदास और विलोम के चरित्र चित्रण में है। इस माने में विलोम भी नाटक का एक महत्वपूर्ण भाग है। विलोम की दृष्टि अधिक व्यावहारिक है, भावनाएं उसे प्रभावित नहीं करती, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वह बड़ा चतुर है और बड़ा संयमित भी। कालिदास से बराबर टकराने वाला और अपने अनाधिकार प्रवेश को हमेशा सही सिद्ध करने वाला, कालिदास अंतर्मुखी है, अपने ही द्वंद्व से पीड़ित और भावनाओं से उद्वेलित, विलोम समय की रग को पकड़कर बड़ी कुशलता से अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाला व्यक्ति है। कालिदास मल्लिका अंबिका जब जब भावना और द्वंद्व की चरम सीमा पर हैं, तब तब वह उन्हें छेड़ता है, अपनी उपस्थिति का पूरा एहसास कराता है और अवसर का पूरा फायदा उठाता है। यही आज की व्यावहारिक और यथार्थ दृष्टि है। अपने अंदर से वह भी कम पराजित, टूटा और दुखी नहीं है, लेकिन वह उन पर विजय पाता है। नाटक के प्रथम अंक में ही राकेश ने विलोम से कहलाया है, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नतीजा यह है कि बहुतों को विलोम सामान्य खलनायक जैसा लगता है, जबकि न कालिदास आम नायक है न विलोम। इस रूप में देखने में विलोम कालिदास के व्यक्तित्व का ही एक अंश है। देखने की बात है कि जो कालिदास पाना चाहता है वह विलोम को मिलता है, और जो विलोम नहीं प्राप्त कर पाया वह कालिदास प्राप्त करता है। इसीलिए विलोम जैसे पात्र की गढ़न की सार्थकता कालिदास के द्वंद्व और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने में है, न कि खलनायक बनने में। राकेश की सूक्ष्म दृष्टि और सांकेतिकता ही नाटक को अधिक सार गर्भित और सूक्ष्म स्तरीय बनाती है। निसंदेह इस माने में विलोम का चित्रण कालिदास से कहीं अधिक सफल, स्वाभाविक और आज की अनुभूति के निकट पड़ता है। विलोम बनाता है उतना कालिदास नहीं। विलोम की चतुरता, वाक्पटुता और व्यवहारिकता के आगे कालिदास कभी कभी बहुत फीका लगता है, खास तौर से अंतिम अंक में। ऐसे भी स्थल आते हैं जहाँ विलोम नायक की तरह उभरने लगता है और कालिदास एक खलनायक जैसी स्थिति में खड़ा दिखाई देता है। दोनों ही असामान्य पात्र हैं, यद्यपि दोनों ही मानवीय दुर्बलताओं से युक्त हैं। पृष्ठ संख्या 54। कालिदास को उसकी समस्त दुर्बलताओं के साथ चित्रित करके अगर राकेश ने समाज की परंपरागत रूढ़ी को तोड़ने और नाटक के नायक की प्रचलित इमेज को तोड़ने की दिशा में योग दिया है और आधुनिक मानव को प्रतिष्ठित किया है, वहाँ विलोम के द्वारा द्वंद्व और यथार्थ, असफलता और सफलता के बीच जीते हुए आज के मनुष्य के बाहरी प्रयत्नों और व्यवहारवादी दृष्टि को प्रमुखता दी है। नाटक में आधुनिकता और समकालीन अनुभव के और भी कई आयाम हैं। विभिन्न पात्र उनमें सहायक हुए हैं। मातुल आज की अवसरवादी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। सत्ताधारियों की चाटुकारिता और प्राप्त अवसर के अनुकूल अपने को बदल लेना उसकी प्रवृत्ति है। भौतिक लाभ ही उसका मुख्य लक्ष्य है, इसीलिए कालिदास द्वारा राजकीय सम्मान को स्वीकार न करने की बात सुनकर वह आग बबूला हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की बात क्या है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? उसकी भौतिक दृष्टि कविता को महत्व नहीं देती, महत्व देती हैं सत्ता को, राज्य को, राजकीय सम्मान को। कालिदास की कविता से उसे वितृष्णा है, क्योंकि वह लोक नीति को ही समझता है। घर में वह बहुत तेज है, लेकिन प्रियंगू के आगे बड़ा विनम्र, पक्का चाटुकार। गुप्त वंश के साथ संबंध उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए अब पशुओं की देख रेख एक बड़ी साधारण ही बात है, लेकिन राकेश इस भौतिक दृष्टि के बहुत समर्थक नहीं है। अंतिम अंक में मातुल के संवादों में कृत्रिम जीवन से वितृष्णा और ऊपरी चमक से भरे जीवन का खोखलापन ही दिखाया गया है। आंतरिकता और आत्मीयता का, अपनी मिट्टी की सौंधी गंध का अभाव ही जैसे उसे तोड़ देता है। मातुल के यहाँ के संवादों में सभ्यता शिष्टता में छिपी बनावट को ही खोला गया है। भौतिक और अवसरवादी दृष्टि जो कुछ समझ पाती है वह सदा झूठ होता है, यानी सत्य सदा उसकी विपरीत होता है। अवसरवादिता और बाह्य जीवन का आकर्षण आज के मनुष्य की मनोवृत्ति है, जो मनुष्य को कुछ स्थायी नहीं देती, देती है केवल एक क्षणिक सुख। आरंभिक अंकों में वह बड़ी तेज गति वाला, बड़ा नाटकीय, सक्रिय है, लेकिन अंत में उसकी टूटन झल्लाहट और उसके पीछे छिपे तीखे अनुभव अधिक स्पष्ट होते हैं। अन्य पात्रों में दंतुल है, एक राजपुरुष, सत्ता वर्ग का प्रतिनिधि। उसका साधिकार प्रवेश, हिंसक वृत्ति, कठोर हृदय, कठोर वचन, अहंकार, अधिकार की लिप्सा और असंयमित भाषा उस वर्ग की मनोवृत्ति का ही बड़ा सफल उदाहरण है। यहीं से नाटक के मूल द्वंद्व की, कालिदास के आंतरिक संघर्ष की शुरुआत होती है। प्रियंगु, कालिदास की राजमहिषी भी उसी सत्ता वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रियंगु के व्यक्तित्व में आभिजात्य वर्ग के दर्प, संस्कार, विनम्रता, कुशलता, व्यवहारिकता, शिष्टता भी है, और एक स्त्री या पत्नी के रूप में मल्लिका के आगे हीनता, ईर्ष्या और घबराहट भी। जगह जगह अपनी हीन भावना को, घबराहट को वह झूठे दर्प से दबा लेती है। निरंतर अपना महत्व दिखाते हुए अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना चाहती है। और अंत में ग्रामीण सादगी और अनन्यता के आगे पराजित होकर एक खिसियाहट के साथ अपने झूठे महत्व को बनाए रखते हुए चली जाती है।